नाहं वसामि वैकुण्ठे न च योगिनां हृदये यत्र मदभक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान ने नारद जी से कहा, ए नारद, नाहं वसामि वैकुंठे, हो सकता मैं कभी वैकुंठ में भी नहीं मिल सकता हूं, न च योगिनां हृदये, और योगी जो मुझे उनके हृदय में खोजने का प्रयास कर रहे हैं, शायद उनके हृदय में भी मैं नहीं मिल सकता हूं, तो फिर प्रभु आप कहां मिलोगे? मिलोगे कि ना? मिलूंगा जरूर। कहां मिलोगे? भगवान ने कहा, यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे कई सारे भक्त एकत्रित होके मद भक्त गायन्ति मेरा गान करते हैं, मेरे कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि, वहां मैं निवास करता हूं। सनक सनातन आदि जो चतुष्कुमार है, उन्होंने की भागवत कथा गंगा के तट पर हरिद्वार में, कलयुग के कुछ प्रारंभ में ही कथा हुई। कथा के अंत अंत में साक्षात भगवान प्रकट हुए। हरिबो, और वे केवल अकेले नहीं थे, अपने कई सारे पार्षदों भक्तों के साथ भगवान पधारे थे, और उन सभी भक्तों ने मिलके, जैसे आज भी आप घोषणा सुन चुके हो, वो उचित ही है कि अब कीर्तन का कथा का समापन है, सातवां दिवस है, तो हम लोग संकीर्तन करेंगे। तो वैसी ही बात हुई थी, सनक सनातन चतुष्कुमारों ने कथा की और भगवान प्रकट हुए और महासंकीर्तन हुआ। इसमें प्रह्लाद थे, प्रह्लाद करताल बजा रहे थे, नारद जी भी अपना वाद्य बजा रहे थे, कौन सा वाद्य वे बजाए होंगे, उन्होंने वीणा बजाया, इंद्र भी पधारे थे, उन्होंने बजाया मृदंग बजाया, मैं तबला कोई नहीं बजा रहा था, गणेश तबला बजा रहा, ऐसे समाचार मिला। और अर्जुन थे, अर्जुन भी बड़े आलापों से गाते हैं, और सुखदेव गोस्वामी भी थे उस कथा में, वे कई सारे भाव भंगिमा, कई सारे भाव प्रकट कर रहे थे, खूब कीर्तन हुआ, संकीर्तन, खूब नर्तन हुआ, भक्ति देवी अपने ज्ञान और पुत्र, ज्ञान और वैराग्य इन पुत्रों के साथ नर्तन कर रही थी, सभी श्रोतागण अति प्रसन्न थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खूब संकीर्तन हो रहा था जम के। हम लोग भी जमाएंगे इस कीर्तन को अभी नहीं। कथा के अंत में हम लोग जाएंगे यहां से मंदिर तक तो खूब कीर्तन होगा। तो मैंने ये बात इसीलिए कही कि उस प्रकट हुए भगवान से सभी श्रोताओं ने सनक सनातन मुनियों ने भी प्रभु को निवेदन किया। क्या था वो निवेदन? निवेदन था कि प्रभु जब भी हम या हम भी या और भी कोई भविष्य में आपकी कथा का कथा महोत्सव का आयोजन करेंगे तो आपको जरूर पधारना होगा। तो प्रभु ने जब अति प्रसन्न हुए थे उन्होंने कहा तथास्तु वैसे ही होगा, भविष्य में जब कथा का आयोजन होगा मैं वहां रहूंगा। गौर हरि बोल, गौर हरि, गौर हरि। तो जब मैंने राधा कृष्ण का छवि का भी दर्शन आज यह जो उपलब्ध है हम सभी को, कल नहीं था आज ही है, तो उस कथा के सनक सनातन कथा के समापन के समय जैसे राधा कृष्ण प्रकट हुए थे तो मुझे स्मरण हुआ कि वैसे ही आज हमारे मध्य में कौन प्रकट हुए हैं? राधा कृष्ण भगवान के, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के। तो ये नहीं कि वे यहां नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने हमको याद दिलाई कि वे यही थे, केवल वे आज प्रकट हुए हैं हम सभी के समक्ष। धन्यवाद प्रभु जी, ऐसे ही दर्शन देते रहिए। भगवान ने वादा किया ही है आप कीर्तन करो, आप कथा का श्रवण करो, समझो कि मैं आपके साथ हूं। हम अगर भगवान का साथ चाहते हैं सदैव तो क्या करना होगा हम लोगों को? सदैव कीर्तनीय सदा हरि ही, हरि का सदैव कीर्तन और नित्यम भागवत सेवया। नित्य प्रति भागवत की सेवा, सात दिवसों से हर सायंकाल को हम एकत्रित होके जैसे नित्य भागवत की सेवा कर रहे थे, श्रीमद् भागवत का श्रवण अध्ययन कीर्तन यही भागवत की सेवा है। ऐसे नित्यम तो सात दिवस, अब आठवें दिवस भी हमें ये भागवत कथा करनी है, नवे दिवस भी, और अगले वर्ष आपको पूछा जा सकता है आप में से कितने भक्तों ने नित्यम मतलब 31 दिसंबर से आगे सा अगले साल के 25 दिसंबर तक हर रोज आपने कथा का श्रवण किया नहीं किया? शायद आप हर रोज अखबार क्या कहा जाए इसको हमने कहा कली का पुराण, कली पुराण, कली का पुराण। उसका एक दो पन्ना पढ़ना कम कर दो, 5-10 मिनट उसको कम पढ़ो या नहीं पढ़ो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। लेकिन श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ने से कितना सारा लॉस ही लॉस है। आत्मा की हानि है। आत्मा के कल्याण के लिए और थोड़ी देर में हम कहने ही वाले थे, लेकिन वैसे भी याद आ गया, कल से नया वर्ष शुरू होगा, आपको फोन आने शुरू हुए ही होंगे या ग्रीटिंग कार्ड्स पहुंचे होंगे। तो फोन पर क्या कह रहा है आपके इष्ट मित्र या ग्रीटिंग कार्ड्स का क्या संदेश है? हैप्पी टू यू ऑल ऑफ यू, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। लेकिन हम कृष्ण भक्त, तो हम कृष्ण भक्त, या दिस कुड गो अप लिटल मेबी, हरी 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 हरी, केवल हैप्पी न्यू ईयर ही नहीं कहते, या हैप्पी बर्थडे ही नहीं कहते, आज थोड़ी देर में कहने वाले हैं, एडवांस में भी कह दिया मल्होत्रा जी को हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन हम भगवान की ओर से कहते हैं कि न्यू ईयर में हम लोग हैप्पी कैसे हो सकते हैं? आज कई सारी पार्टियां चलेगी मध्य रात्रि तक, नए वर्ष के आगमन की शुभ बेला तक, और क्या कहा जाए, हमको तो पता भी नहीं क्या क्या होता है दुनिया में, लेकिन कुछ कल्पना कर सकते हैं कैसे मनाएंगे, संसार कैसे मनाता है हैप्पी न्यू ईयर को। शराब जो सबसे खराब, इसका स्मरण भी हमें ऐसे मंगलमय वातावरण में नहीं करना चाहिए, और क्या क्या नहीं, ईसाई मसीह कहे thou shall not kill, ये क्रिसमस भी है, नया वर्ष भी है, हम हैप्पी होंगे thou shall not kill अगर करेंगे, प्राणियों की हत्या नहीं करेंगे, हम लोग सुखी होंगे नए साल में, मटनम चिकनम नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति। भगवान के आदेश का पालन करने से, इस प्रकार संकल्प लेने से हम लोग सुखी होंगे। कई सारे संकल्प हो सकते हैं, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, ये नहीं कि और एक नया साल आया और वही पुरानी बातें या साधन या कार्यकलाप और विचार अगर रहेंगे तो उसके परिणाम और दुष्परिणाम भी वैसे ही होंगे। अगर रिजल्ट्स कुछ नए हम चाहते हैं तो साधन भी कुछ नए, कार्यकलाप भी कुछ नए, विचार भी कुछ नए, विचारों को हमें अपनाना होगा। न्यू रेजोल्यूशंस, फ्रेश रेजोल्यूशन का समय है, प्रातःकाल में भी पुनः वही खान पान की बात है। इसमें अगर हम सुधार कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत प्रोत्साहित करता है हमें, हरे कृष्ण, आहार आहार शुद्धि से विचार शुद्ध होगा, खान पान से, और खान और पान, पान में पेय भी है और लोग धूम्रपान भी करते रहते हैं और किस कई विशेष प्रकार की ब्रांड की सिगरेट पी के वो समझते कि हमारा अभी लाइफस्टाइल कैसी बन चुकी है। लीव लाइफ किंग साइज, किंग साइज का लाइफ जीने के लिए बस हमारी ब्रांड की सिगरेट पियो ना, आपका जीवन कैसा बनेगा? जस्ट लाइक अ किंग, राजा बनोगे। और उस ब्रांड की सिगरेट जब हाथ में लेके व्यक्ति लेता है तो मानो कुछ राजा प्रवेश करता है, उसके हाव भाव मानो राजा जैसे होते हैं। हमने देखा भी, मैं दिल्ली में था, नोएडा की ओर जा रहा था, तो हमने बहुत बड़ा बिल बोर्ड देखा, होर्डिंग देखा, उसमें ये एडवर्टीजमेंट चल रही थी, लीव लाइफ किंग साइज। ठीक है, पढ़ा हमने, थोड़े ही आगे बढ़े तो और एक साइन बोर्ड हमने पढ़ा, क्या लिखा था, कैंसर हॉस्पिटल दिस वे। कैंसर अस्पताल इस ओर है। तो फिर मैंने आई पुट दिस टू थिंग्स टुगेदर, तो कोई कठिन भी नहीं था, तो लीव लाइफ किंग साइज और फिर कैंसर हॉस्पिटल में जाके इंटेंस केयर यूनिट में राजा कुछ अंतिम सांस ही ले रहा है। अगर हम रेजोल्यूशन ले सकते हैं, हरि नाम का पान करो, भगवान को चढ़ाए हुए पुष्प सुगंधित द्रव्य उसको सूंघो, परम दृष्ट्वा निवर्तते, एक नया स्वाद, ऊंचा स्वाद, हायर टेस्ट, टेस्ट का हम लोग अनुभव करेंगे तो बड़े आसानी के साथ ठुकरा सकते हैं हम इन बुरी आदतों को। इसमें न तो हमारे मन का, न तो शरीर का, आत्मा का तो है ही नहीं, हमारे शरीर का भी कल्याण नहीं है, इसके कारण कई सारे रोग हो जाते हैं। ऐसे कहते कहते वैसे भागवत कथा, तो कलयुग ऐसा टॉपिक है आज का, एक कलयुग के लक्षण, उसके दुष्परिणाम और उस पर क्या है उपाय। तो हमारी हालत, हमारा स्वास्थ्य, हाउ आर यू, कैसे हो, स्वास्थ्य कैसे है आपका, जब हम पूछते हैं, या एक समय जब पूछा करते थे हमारे बुजुर्ग एक दूसरों को, पता है वे क्या सोचते थे, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो ना, मतलब उनके इस प्रश्न का, जिज्ञासा का तात्पर्य हुआ करता था, स्व में स्थित हो, या स्व कौन है, आत्मा हमारा स्व है, हम आत्मा है, स्व मैं, सेल्फ जो हमारा है वो आत्मा, स्व स्वस्थ हो, आत्मा परमात्मा में भगवान के चरणों में स्थित है, स्वस्थ हो, तो जिस प्रकार की भावना उसके अनुसार इस स्व का हम लोग अर्थ निकालते हैं, सेल्फ मतलब सोल आत्मा भी है, औरों के लिए वह स्व मन हो सकता है, इंटेलेक्चुअल बीइंग्स जो है वे अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को अपना स्व मानते होंगे, सेल्फ मानते होंगे। तो कुछ जो देहात्म बुद्धि वाले हैं, जो अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वो शरीर को ही समझते होंगे, दिस इज माय सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर। लेकिन सेल्फ को कोई जानता ही नहीं तो कैसे टेक केयर होगा। और जब हमने कहा कि जानता नहीं तो हम तो सोच रहे आत्मा, आत्मा हमारा रियल सेल्फ है, लेकिन ना तो आत्मा का ख्याल हो रहा है, आत्मा की पुष्टि हो रही है, आत्मा का पोषण हो रहा है, कुछ शोषण ही चल रहा है। और हमारे शरीर और मन का भी हम लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो ये खान पान, ये भोग विलास, इसके कई सारे दुष्परिणाम हम देख रहे हैं हमारे शरीर के स्तर पर भी। आत्मा को तो भूल ही जाओ, भूल नहीं सकते, लेकिन जब चर्चा इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे हम लोग, तो शरीर का भी हम लोग ख्याल नहीं कर रहे। वो अमेरिकन्स वन अमेरिकन्स कुछ ही समय पहले एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ, ग्लोबल सर्वे, हेल्थ के दृष्टि से कौन सा देश, किस देश के लोग अधिक हेल्थी है, स्वस्थ है, किस देश के लोग मीडियम, किस लोएस्ट स्टेटस किस देश का है हेल्थ के दृष्टि से, तो जानते हो क्या क्या परिणाम, क्या निष्कर्ष था इस ग्लोबल सर्वे का? वैसे मैंने उस देश का नाम लिया ही तो आप शायद सोचे होंगे, हाँ यस यस वही फैक्ट है, अमेरिका इज अ मोस्ट सिक नेशन इन द वर्ल्ड, सारे जगत में सबसे अमीर भी कहते हैं, लेकिन अगर बीमार अगर कोई देश है वो है अमेरिका, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और क्या क्या कहा जा सकता है उनके टाइटल्स, द ओनली सुपर पावर। 10-15 साल पहले कोई कंपटीशन चल भी रही थी, अब कोई नहीं रही, उनका हाल ये है, द मोस्ट सिक नेशन इन द वर्ल्ड, उसमें से 20% आर फिट फॉर मेंटल हॉस्पिटल, मानसिक रोग। हमारे शास्त्रों में एक को कहा है, एक व्याधि कहा है, दूसरा आधि कहा है, आधया व्याधया। तो व्याधि शरीर के स्तर पर होती है, स्थूल शरीर के लिए व्याधि है, तो मन के रोगों के लिए आधि कहा है। तो आधि ग्रस्त व्याधि ग्रस्त जानते हो, इसमें आश्चर्य की तो कोई बात नहीं, मुझे तो आश्चर्य नहीं लगा जब ये कंक्लूजन मैंने मुझे पढ़ने को मिला। वेल, ये तो रोग का संबंध है भोग के साथ, भोगी नंबर एक देश रोगी नंबर एक देश होना ही चाहिए। सावधान, अगर हम भागवत का श्रवण करेंगे, भागवत कुछ ही और आदर्श दिखाता है हमारे समक्ष, ऋषि मुनियों के आदर्श, कई सारे सद्गृहस्थों के भी, ये नहीं कि केवल वैरागियों के और त्यागियों के, सन्यासियों के, यतियों के, नहीं, कई सारे गृहस्थों के भी आदर्श हमारे समक्ष है, उसी का स्मरण दिलाता है ये श्रीमद् भागवत या भगवत गीता। The values, एक न्यू सेट ऑफ वैल्यूज हम अपना रहे हैं. द 5-star होटल कल्चर भी कहते हैं. कहां है वो अतिथि ग्रह, अतिथि देवो भव. वो अतिथ्य ही नहीं रहा या घट रहा है, तो उसी के साथ होटलों की संख्या बढ़ रही है. हम नोएडा में थे, है नोएडा के भी हम है, दिल्ली नोएडा भी हमारा कार्यक्षेत्र है. तो हम एक आर्किटेक्ट से मिले तो उन्होंने कहा कि आजकल होटलों के लिए थोड़ी कम कंस्ट्रक्शन ऑफ द होटल्स परमिशन नहीं मिल रही है, लैंड कम मिल रहा है. हमने कहा किस किस काम के लिए आप दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अस्पताल्स के लिए और द हॉस्पिटल्स, ताकि होटल से लोग कहां ट्रांसफर किए जाएंगे, इन द हॉस्पिटल्स. फिर बड़े मिनिस्टर आएंगे और अस्पताल खुलेगा, या पहले अगर 50 बेड का अस्पताल था, अब कितने बेड का हो गया, 500 बेड्स. हॉस्पिटल ओपन बाय द हेल्थ मिनिस्टर, गुड न्यूज. इज दैट अ गुड न्यूज? 50 के स्थान पर अगर 5 अस्पताल या 5 ही बेड रह गए, दैट्स द गुड न्यूज. वो प्रोग्रेस है, नहीं तो रिग्रेस है. मैं एक गांव से, मेरा भी जन्म एक गांव में हुआ. तो जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में कोई अस्पताल नहीं था. एक डॉक्टर आता था हर गुरुवार के दिन 2 घंटे के लिए साइकिल पर बैठ के, और दूसरे गांव से. लेकिन कभी कभी एक सप्ताह में उसको एक भी मरीज नहीं मिलता था. बेचारा दुखी होकर लौटता था अपने गांव. लेकिन अब उस छोटे से देहात में भी अस्पताल खुल गया. हम सोचते हैं कि हमने प्रगति की. तो एक कली का प्रभाव है, कई सारे दुष्परिणाम है. 5,000 वर्ष पूर्व की बात है. वैसे कल ही हम लोग उस लीला का श्रवण किए, भगवान का स्वधाम गमन. भगवान प्रभास क्षेत्र में कैसे थे, सरस्वती के तट पर, वो चतुर्भुज दर्शन आपके समक्ष, वो छवि आज भी होगी. अंत में भगवान ने वहीं पर निमीलयत लोचनानी, भगवान ने आंखें भी बंद की. उसी के साथ सभी जो देवता वहां पहुंचे हुए थे, पुष्पों की वृष्टि हो रही थी, नृत्य भी हो रहा था, और कई सारी स्तुतियां हो रही थी, कई सारे वाद्य बज रहे थे. भगवान ने प्रस्थान किया. यदा मुकुंदो भगवान क्षाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दीनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः. तो हुआ क्या, यदा मुकुंदो, जब मुकुंद भगवान क्षाम त्यक्त्वा, मतलब इस पृथ्वी पर जो 125 वर्षों तक भगवान रहे, क्षाम त्यक्त्वा इस धरती को छोड़ के पीछे, स्वपदम अपने स्वधाम भगवान लौटे, तद्दीनात उस दीन से ही तो कलिरायातः, कली ने प्रवेश किया. और कली की क्या पहचान है, सर्व साधन बाधकः, अपनी साधना में बाधा डालने वाला है ये युग कलियुग. जिन साधनों से साध्य की प्राप्ति है, साध्य है भगवान, साध्य है भगवान की कृष्ण प्राप्ति, साध्य है भगवान का धाम प्राप्ति हम लोगों के लिए भी, जिस गांव के, जिस नगरी के, जिस प्रदेश के हम लोग हैं। जहां गए हमारे तुकाराम, अमीजा तो क्या कहा उन्होंने, अमचा गावा अमसा राम राम घ्यावा। तो तुकाराम महाराज के लिए फ्लाइट आई थी यहां देहू में, सभी ने तो सोचा होगा क्या कह रहे हो, आपका गांव तो ये रहा, आप ऊपर कहां जा रहे हो, देहू आपका गांव? नहीं नहीं, ये शरीर के अपने गांव होते हैं, कई सारे शरीर भी हुए हमारे तो कई सारे गांव भी हुए हैं, हम हैं आत्मा, आत्मा का गांव, आत्मा का मदरलैंड फादरलैंड वैकुंठ है, गोलोक है। त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, अगर भगवान ही हमारे सब कुछ है तो भगवान का देश क्या हमारा देश नहीं है? वो गोलोक वो वैकुंठ हमारा मदरलैंड है फादरलैंड है, तो वो जाना भी हमारा, हमारे जीवन का वहां जाना लौटना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य वो सिद्धि साधन से प्राप्त होगी, तो साधन में बाधा डालता है ये कलयुग। तो भगवान गए और कली ने प्रवेश किया, राजा उस समय राजा थे परीक्षित, राजा सम्राट परीक्षित, हस्तिनापुर उनकी राजधानी थी, एम्परर सम्राट, इस सारे पृथ्वी के सम्राट, कैपिटल हस्तिनापुर। तो उस नगरी में उन्होंने एक दिन का ये दृश्य है, जब नगर भ्रमण हो रहा था, सहसा उनका ध्यान क्या हो रहा, एक कोई राज वेशभूषा तो राजा जैसी है, उसके हाथ में डंडी है, डंडा है, लाठी है, और वो एक गाय और बैल को पीट रहा है। राजा परीक्षित कूदे उस रथ से, तलवार निकाले और उसके टुकड़े टुकड़े चटनी करने के लिए उस व्यक्ति की तैयार ही थे। ओ बेचारा, राजा हो तो ऐसा, जो केवल मनुष्यों की ही रक्षा नहीं करे, गाय और पशु भी तो राजा की प्रजा है, क्या केवल उनके पास पासपोर्ट नहीं है इसीलिए वे आपके देश के नागरिक नहीं है? राजा परीक्षित ने उनको भी अपनी प्रजा समझा, उनका गाय की भी रक्षा करना, और फिर उस गाय जिसकी भगवान स्वयं गोपाल रक्षा करते हैं, तो उन्हीं के प्रतिनिधि होते हैं राजा, भगवान की ओर से सभी पशुओं का, उसमें भी गाय की रक्षा करना, धर्म समझा, कर्तव्य और किया भी अपना फर्ज। ऐसे कहते समय मुझे और की बात, हमारी पार्लियामेंट में प्रस्ताव था कि हमारे इस देश के जो हुआ स्लॉटर हाउसेस है, कत्तल खाने, उसका मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। तो बेस्ट प्रस्ताव ये होता कि हमारे देश के सारे कत्तल खाने क्या किए जाएंगे, बंद किए जाएंगे। ऐसा प्रस्ताव नहीं था क्या किया जाएगा हमारे देश के जो कत्तल खाने हैं उनका आधुनिकीकरण होगा, कैसे किया जाएगा, इस पर सारी पार्लियामेंट बहस कर रही है, और नतीजा, इस नतीजे पर वे पहुंचे कि हम इंपोर्ट करेंगे विदेश से ऐसे हथियार, ऐसे शार्प रेजर्स एंड ब्लेड्स एंड मशीनरी, ताकि जब पशु की हत्या होगी, गाय की हत्या होगी, तो कष्ट नहीं होगा गायों को और पशुओं को। कितने दयालु हमारे सांसद, गाय और पशुओं के प्रति कितनी दया। अगर मारना ही है तो ऐसा मारो। कहां राजा परीक्षित, कहां आज के राजा। और फिर यथा राजा क्या कहे, फिर माफ करना, स्वप्न भी था, देश को स्वतंत्र करेंगे तो बनाएंगे इस देश को राम का राज, राम राज। राम के अपने जन्म स्थान पर ही हम लोग मंदिर नहीं बना सकते, कहां से बनाएंगे उनका राम राज, कहां स्थापना होगी राम राज की। तो राजा परीक्षित की शरण में आया, क्षमस्व क्षमस्व, रक्षा माम पाही माम। किसी को दंडित करने से उसकी उसको क्षमा करना एक और भी धर्म का ऊंचा तत्व माना जाता है। तो राजा परीक्षित ने क्षमा की, मतलब उसका गला या हाथ पैर काटने चाहिए थे, नहीं काटे, जीवन दान दिया। अब ये व्यक्ति, कोई स्थान चाहिए था उसको। हां राजा परीक्षित जी, आपके इस साम्राज्य में मुझे भी कुछ स्थान दीजिए ना। तो हुआ, तो राजा परीक्षित तैयार हुए और उन्होंने चार स्थान दिए। चार स्थानों में तुम रह सकते हो बस, और कहीं नहीं। वो चार स्थान कौन से थे, उनके नाम गिनाए। राजा परीक्षित ने कहा द्यूतम, या दूत क्रीड़ा खेली जाती, गैम्बलिंग, द स्पेक्युलेशन, कई प्रकार के होते हैं। द्यूतम पानम, या मद्यपान इत्यादि, कई सारे पान, पेय, या पिए जाते हैं, वहां रहोगे तुम। द्यूतम पानम स्त्रियः परस्त्री पर पुरुष गमन जहां होता है, वेशागमन जहां होगा वहां भी तुम रहोगे। शूना जहां मांस भक्षण, अभक्ष भक्षण जहां होता है वहां भी रह सकते हो, ठीक हो जाओ। कली प्रसन्न नहीं था, हाँ प्रसन्न था भी, लेकिन और भी तो एकाध दूसरा स्थान नहीं दे सकते हो क्या, ठीक है। जात रूपम, जात रूपम, धन में भी, एन केन प्रकारेन, अन्याय से, कई मार्गों से किया हुआ, एकत्रित किया वो जो धन है, वहां भी तुम्हारा वास होगा। वो चार और ये पांचवा स्थान कली को मिले। 5000 वर्ष पूर्व इस कली को ऐसे स्थान ढूंढना मुश्किल हो रहा था जहां वो निवास कर सकता था, लेकिन इस कली के अथक प्रयास से हुआ क्या है, अब ऐसा स्थान प्राप्त होना कठिन हो रहा है जहां कली का वास नहीं हो। तो हुआ, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना कर रहे थे, 40 वर्ष पूर्व की बात है, उन्होंने इन चार बातों का स्मरण किया। वैसे योजना ही थी कि जब वे स्थापना करेंगे इस आंदोलन की, उनके अनुयायी बनेंगे, उनको उनके लिए ये नियम दिया जाएगा, द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो प्रभुपाद के जब शिष्य बने और पहली बैच तो अमेरिकन डिसाइपल्स, अमेरिकन यंग बॉयज एंड गर्ल्स जब दीक्षा ले रहे थे, वे संकल्प ले रहे थे। क्या संकल्प? प्रभुपाद दीक्षा नहीं देते थे, दीक्षा लेने के लिए, मंत्र लेने के लिए दीक्षा समारोह के समय जब शिष्य आगे बढ़ते थे, उनसे प्रतिज्ञा करवाते, और वो परिपाटी आज तक जारी ही है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में कोई दीक्षित होना चाहता है, फिर वो कहीं का भी हो सकता है, अफ्रीका का हो सकता है, चीन का हो सकता है, हांगकांग का हो सकता है, पुणे का हो सकता है, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, जो दीक्षा का अभिलाषी है। और वैसे उसको देखा जाता है, ये नहीं कि कोई भी भीड़ में से आके भिक्षा दीक्षा की भिक्षा मांगे और उसको दीक्षा दी जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसी सस्ती चीप दीक्षा नहीं दी श्रील प्रभुपाद जी ने किसी को, 6 महीने, 1 year, 2 years, इसको देखा जाता था कि वो नियमों का पालन कर रहा है, तभी उसका रिकमेंडेशन और फिर दीक्षा समारोह के समय उसको उसको संकल्प लेना पड़ता है। आज भी लेना पड़ता है, अगर दीक्षा लेनी है किसी को तो उसको कहना पड़ता है, मैं क्या नहीं करूंगा, नो मीट ईटिंग, मैं मांस मछली अंडा प्याज लहसुन तक नहीं खाऊंगा, और खाऊंगा तो कैसे खाऊंगा, भगवान को भोग लगा के सीधे खाऊंगा, तो मैं ही बन गया भोगी, फिर वो वेजिटेरियन भी खाना हो सकता है, तो मैंने भोगा तो मैं हो गया भोगी, नहीं नहीं मैं भोगी नहीं, मैं त्यागी हूं, मैं पहले भगवान को भोग लगाऊंगा, भगवान खाएंगे फिर प्रसाद खाऊंगा मैं, कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है, बड़ी सरल विधि है, खाना तो है ही, खाने के बिना जीना संभव नहीं है, अन्नाद भवन्ति भूतानि कहा है, हम जी सकेंगे तब जब तक हम लोग भोजन खाएंगे, अन्न खाएंगे तो जी सकते हैं शरीर, तभी संभव है। तो ये पहला नियम देश विदेश भर में पालन किया जा रहा है इस नियम का, गाय बड़ी गौशालाएं खुली है, न्यू वृंदावन बना है, कई सारे नए स्थान बने हैं, गाय बड़ी प्रसन्न है वहां की, खूब दूध देती है, गाय के कई पदार्थ बनते हैं, भगवान को खिलाए जाते हैं, गाय भी प्रसन्न, भगवान भी प्रसन्न, भक्त भी प्रसन्न। तो एक समय के ये गो भक्षक अब गो रक्षक बन रहे हैं, बने हैं। और वे अब कह रहे, यस नाउ वी आर बेटर क्रिश्चियंस, पहले तो हाँ हाँ ईसाई धर्म में हमने जन्म तो लिया था और हम पढ़ते तो थे वो 1 of the 10 commandments, thou shall not kill, लेकिन हमने तो हुआ फॉर द ब्रेकफास्ट फॉर लंच फॉर डिनर तो हम यही खाते रहे, मीट ही खाते रहे, कई भिन्न प्रकार का, कभी रेड तो कई किस प्रकार का, कभी येलो, कभी who knows what, लेकिन अब हम लोग अच्छे क्रिश्चियन बने हैं, ईसाई मसीह के दिए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं। ये पहले संकल्प करना पड़ता था प्रभुपाद के समय, आज भी पड़ता है। दूसरा नियम है, कोई नशा नहीं करूंगा मैं, नो इंटॉक्सिकेशन, शराब नहीं जो खराब है ही, यहां तक कि चाय भी नहीं पीते हमारे भक्त, एकलव्य एंड कंपनी, बाल कृष्णा एंड कंपनी, कम हियर। वैसे दिस इज जस्ट वन सैंपल, एक नमूना है यहां, लेकिन ऐसे देयर आर मिलियंस। रशिया में भी अब कुछ ही समय पहले द न्यूज वीक में समाचार द हेडलाइन ये थी कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन फॉर्मर सोवियत यूनियन, पता है क्या लिखा था, द हरे कृष्ण रिलीजन, द फास्टेस्ट ग्रोइंग। वहां कोई समस्या कम है इसी बात नहीं है हरे कृष्ण वालों के लिए भी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं कृष्ण के नाम के साथ। और उसी आर्टिकल में पढ़ने को मिला, पता नहीं कहां से, हमको भी ये स्टैटिस्टिक्स पता नहीं था, उन्होंने लिखा था 700,000 मतलब 7,00,000 हरे कृष्ण अनुयायी रशिया में। और मतलब उसमें से कई सारे रशियंस, चार नियम का पालन करने वाले आपको मिलेंगे, कोई मांस भक्षण नहीं करना पहला नियम, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना, और कोई नशा नहीं, चाय तक नहीं, रशिया में भी नहीं, जहां कितनी ठंडी लोग कहते ठंडी है इसलिए चाय तो पीना पड़ेगा, आई टू स्मोक सो कोल्ड, लेकिन भक्त छूते नहीं। वहां वैसे चाय को चाय ही कहते रशिया में। हम वहां फ्लाइट में एयर होस्टेस जा रही थी, सी वॉज सर्विंग टी, तो कहते चाय 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 कहते हैं। और फिर हम एक कॉन्फ्रेंस में गए तो एक रशियन विद्वान ने कहा, कई सारे डेलीगेट्स रशियन और भी कई देशों के थे, हम हरे कृष्ण वाले भी थे, तो उन्होंने ये जो रशियन रशिया जो है इसका थोड़ा एटिमोलॉजी कुछ समझाया, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि जो ऋषि है, ऋषि का जो प्लूरल है, ऋषि का बहुवचन कैसे कहोगे आप, ऋषयः, मुनि का मुनयः, इस प्रकार बन जाता है, हरि का हरयः। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक समय सारे ऋषि मुनि ही हुआ करते थे, इसलिए हमारे देश का नाम क्या हुआ, रशिया, मतलब ऋषि मुनियों की भूमि। प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, ये सृष्टि कब से है, भूल जाओ उस डार्विन को और उस डार्विन की थियोरी को जो हम सबको उल्लू बनाया, उल्लू के पट्ठे बन गए हम, या बंदर की औलाद बन गए हम, अमीबा से बना, कौन बना, माकड़, बंदर बना, और बंदर से हम बने। कुछ 5-6-7 हजार पूर्व तो मनुष्य कहां गुफा में रहते थे, और फिर से बंदर से मनुष्य बना तो कैसे बना, पीछे की जो पूछ है क्या हुई, अंदर घुसी, और आगे के हाथ, आगे के पैर बन गए उसके हाथ और खड़ा हो गया। बकवास, इस प्रकार का ब्रेन वॉशिंग इस देश में भी हो रहा है, जिस देश में न तो केवल गंगा और जमुना बहती है, जिस देश में ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कुछ अन्य ही ज्ञान देता है जो शाश्वत और सही ज्ञान है।